समर्थ हाथों में कॉफी का मग लिए सीढ़ियां चढ़ रहा था। वो इतने धीमे कदमों से चल रहा था जैसे वो नई नवेली दुल्हन हो या उसके पाँव में मेहंदी लगी हो। उसने अपने मन ही मन कहा, कितने ख्वाब होते हैं पति के कि उसकी पत्नी उसे सुबह सुबह गीले बालों के साथ उठाएगी, प्यार से कुछ कहेगी, कॉफी पिलाएगी, नाश्ता करवाएगी, और यहाँ ये है, अभी तक पूरा अस्तबल बेचकर सो रही है और मुझे इसके लिए कॉफी लेकर जाना पड़ रहा है। भगवान जी, सारे जुल्म मुझ पर ही करने हैं, मुझ जैसी मन्ही सी जान पर आपको दया नहीं आती है। खुद में बड़बड़ाते हुए आखिरकार समर्थ अपने कमरे के सामने पहुंच ही चुका था। उसने एक झटके से दरवाज़ा खोला तो सामने बेड पर त्रिशा औंधे मुँह लेटी थी। उसका दुपट्टा बेड से नीचे लटक रहा था और वो अपने दोनों हाथों से पिलो को हक किए सुकून से सो रही थी। जो समर्थ सीढ़ियों पर त्रिशा को गालियां देते हुए आ रहा था, उसे इतनी सुकून से देखकर उसका दिल नहीं किया कि वो उसे उठाकर कॉफ़ी पीने के लिए बोल सके। वो सोते हुए उसे बहुत प्यारी लग रही थी। खिड़की से आती हवा त्रिशा के चेहरे पर पड़ रही थी जिससे उसके हल्के हल्के बाल हिल रहे थे। समर्थ आहिस्ता से कॉफ़ी को वहीं उसके सिरहाने के पास रखी टेबल पर रखते हुए उसके करीब बैठ गया और फिर आहिस्ता से उसके उड़ते बालों को समेटकर उसके कान के पीछे किया और फिर झुकते हुए गौर से त्रिशा के चेहरे को देखने लगा। सुबह की खिली धूप में उसका चेहरा चमक रहा था। वहीं किसी की इतनी करीबी महसूस कर त्रिशा की नींद भी कच्ची हो चुकी थी। उसने कसमसाते हुए अपनी आँखें खोली और समर्थ को इतने करीब देखकर वो एकदम से चीख उठी। उसकी चीख सुनकर समर्थ अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और झट से उससे दूर होते हुए बोला, ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम सुबह 8 बजे तक सोती रहोगी, तुम्हारा ससुराल है, कुछ रीति रिवाज भी होते हैं। त्रिशा अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस ले रही थी। वो रात वाला इंसिडेंट भूली ही नहीं थी और उसका डर उसके चेहरे पर अभी दिखाई दे रहा था। उसने घबराते हुए चारों तरफ देखा, उसका दुपट्टा नीचे लहरा रहा था। उसने झट से उस दुपट्टे को अपने सीने पर डालते हुए कहा, इतनी भी लेट नहीं हुई है, सिर्फ 8 बजे हैं और नॉर्मल इंसान कम से कम 7-8 घंटे तो सोता ही है। समर्थ ने आंखें छोटी करते हुए कहा, तो क्या मैं तुम्हें नॉर्मल इंसान नहीं दिखता हूँ? त्रिशा बेड से उठते हुए बोली, तुम तो सुबह 4 बजे उठ गए थे, 4 बजे कौन उठता है, इसीलिए मुझे तो नॉर्मल इंसान नहीं लगते हो। समर्थ ने जबड़े करते हुए कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पास आकर तुम्हें ये लेक्चर सुनने का। नीचे कल्याण सिंह जी बुला रहे हैं तुम्हें, उन्हें मंदिर जाने की कोई रस्म करवानी है तुमसे, तो जल्दी से तैयार हो जाओ और ये कॉफ़ी रखी है, अगर नींद अभी भी नहीं हो रही है तो ये गर्म गर्म कॉफ़ी पियो पर अपनी नींद उड़ाओ। इतना बोलकर समर्थ उठा और तेज़ कदमों से वापस कमरे से बाहर चला गया। त्रिशा बुत बनी वहीं खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि समर्थ उसके लिए कॉफ़ी लेकर आया था। अचानक ही त्रिशा के डरे हुए चेहरे पर एक स्माइल आ गई जो समर्थ देख लेता तो ज़रूर चिढ़ जाता। उसने हंसते हुए कहा, प्राउड ऑफ यू त्रिशा, तुमने तो यूनिवर्सल चीज़ों को ही चेंज कर दिया। कहाँ अब तक बेचारी लड़कियों पर अत्याचार होता था, पति के लिए ये करो, पति के लिए वो करो, अब मेरा पति देखो, मेरा गुलाम बनेगा। बहुत हुई पुरुष प्रधानता, इस बार महिला प्रधानता के मज़े समर्थ रावत उठाएगा। इतना बोलकर त्रिशा ने खुशी खुशी वो कॉफ़ी पी ली और फिर नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। आज उसने वाइन कलर की साड़ी पहनी थी जो उसका फेवरेट कलर था। वो खुद को मिरर में देखते हुए खुद ही खुश हो रही थी। उसने अपनी आंखों से काजल निकालकर अपने कान के पीछे लगाते हुए कहा, वाह त्रिशा, क्या लग रही है, अगर अमर मुझे इस तरह दिखेगा तो जानवी जैसी 1000 लड़कियों को भूल जाएगा। ये सोचते हुए त्रिशा खुद में ही शर्मा रही थी। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, ओ गॉड, मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है। फिर वो अपनी लिपस्टिक और ज़्यादा लगाते हुए लास्ट बार खुद को मिरर में देखती है और फिर इतराते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। बाहर जाकर वो सीधे हाल में जाती है जहाँ कल्याण सिंह और रजत बैठे थे। वहाँ किसी और को न देखकर त्रिशा का चेहरा उतर गया। उसने सोफे पर बैठते हुए कहा, जी दादाजी, आपको मुझसे कौन सी रस्म करवानी है और बाकी घर वाले कहाँ चले गए? कल्याण सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, अमर और दीक्षांत ऑफिस चले गए हैं और समर्थ वो तो ऊपर ही गया था तैयार होने, मुझे तुम दोनों को मंदिर भेजना है, आशीर्वाद लेकर आना और उसके बाद आकर सबके लिए लंच बना लेना। कहते हैं नई नई बहू से ये सारी रस्में करवानी चाहिए, बाकी मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो हमें जितना पता है हम बस इतना कर लेते हैं। त्रिशा ने अपने होठों पर ज़बरदस्ती की मुस्कान सजाई। कल्याण सिंह ने आगे कहा, और जानवी भी अपने कमरे में ही गई थी, उसे क्या काम है कि ये मुझे नहीं पता है, और माही अभी तक उठी नहीं है। समर्थ ने तेज़ी से सीढ़ियों से उतरते हुए कहा, कल्याण सिंह जी, कब से आपने ये न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम शुरू कर दिया? कल्याण सिंह ने मुँह बनाते हुए कहा, जब से तुम्हारी शादी हुई है। शादी का नाम सुनकर समर्थ का अच्छा हो चुका मूड एक बार फिर बिगड़ गया और उसने त्रिशा को नज़रअंदाज करते हुए तेज़ कदमों से आकर कल्याण सिंह के पैर छूते हुए कहा, ठीक है, जा रहा हूँ मंदिर, अपने पंडित जी को बता दिया ना कि हम दोनों आ रहे हैं। कल्याण सिंह ने हल्के से मुस्कुराते हुए हामे सर हिलाया और फिर समर्थ हाथ से चाबी को घुमाते हुए बाहर जाने लगा। कल्याण सिंह ने त्रिशा की तरफ देखा, जो अब भी हैरानी से समर्थ को देख रही थी। समर्थ ने एक बार भी त्रिशा को नहीं देखा था, लेकिन समर्थ इतना ज्यादा डैशिंग लग रहा था कि त्रिशा की नज़र उस पर जरूर ठहर चुकी थी। समर्थ ने इस वक्त डीप ब्लू कलर का कुर्ता पजामा पहना था। ऊपर से उसके सिल्की भूरे बाल और पीछे नए नक्श आज पहली बार त्रिशा नोटिस कर रही थी, क्योंकि कभी भी समर्थ इतना सज धज की नहीं रहता है। वो हमेशा मैसी बनकर रहता है। उसका आधा चेहरा तो दाढ़ी से ढका रहता है और ऊपर का फोरहेड बालों से, और जबकि एक्सप्रेशन एक एक सेकंड में चेंज होते हैं, जिस वजह से समर्थ को देखने का मौका अच्छे से त्रिशा को मिला नहीं था। कल्याण सिंह ने गहरी सांस भरते हुए कहा, बेटा तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें आकर बोलेगा कि मेरे साथ चलो? अभी बहुत अकड़ है उसमें, उसे लगता है तुमने धोखे से उससे शादी कर लिया है और तुम्हें उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं बितानी है। अब ये सही कैसे होगा कि तुम दोनों जानो, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। वो तुम्हें इतनी अगेंशन नहीं देगा जितनी कि तुम हकदार हो। अभी जाओ, ऑल द बेस्ट। त्रिशा ने हल्की सी स्माइल के साथ कल्याण सिंह और अजित के पांव छुए और फिर समर्थ के पीछे पीछे चली गई। समर्थ गाड़ी में बैठा हॉर्न बजा रहा था और त्रिशा पर पटकते हुए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठकर बोली, तुम मुझे एक बार बोल भी सकते थे कि त्रिशा चलो हम मंदिर चलते हैं। समर्थ ने गाड़ी स्टार्ट करके गुस्से में कहा, मेरे घर वाले सुबह से 100 बार बोल चुके हैं मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। अब क्या माइक लेकर बताऊं पूरी दुनिया को कि हाँ हम दोनों मंदिर जा रहे हैं?